नमस्कार भारत, तारीख 2 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर दलित संगठनों का आज भारत बंद रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी केंद्र सरकार।
सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, सरकार इस मत की है कि इस रिव्यू भी करेंगे उसको, और जरूरत हुई तो हम पार्लियामेंट में भी इशू को लेके आएंगे।
भारत प्रशासित कश्मीर में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों की मुठभेड़ में 3 जवानों समेत 20 की मौत, अलगाववादियों ने बुलाया बंद।
रेल सर्विस है उसको बंद किया गया है, शिक्षा संस्थानों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है।
और पश्चिम बंगाल के आसनसोल में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, लेकिन हिंसा के बाद खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं लोग।
नुकसान तो एक तरफ का तो नहीं ना होता, दोनों तरफ का होता, दोनों को डर लगता है।
सुनवाएंगे पाकिस्तान डायरी और खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से। दलित संगठनों ने आज किया है भारत बंद का आह्वान। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इस कानून के तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के विरोध में भारत बंद की अपील की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का कहना है कि त्वरित कार्रवाई के प्रावधान को कमजोर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दलित गुस्से में हैं और खुद को पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद चीन का बंद पड़ा स्पेस स्टेशन धरती पर गिरते हुए देखा जा सकता है। चीनी स्पेस एजेंसी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी थी। तकरीबन 8.5 टन वजन का Tiangong-1 नाम का स्पेस स्टेशन चीन की महत्वाकांक्षी स्पेस परियोजना का हिस्सा है। इसे साल 2011 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और 5 साल बाद इसने अपने मिशन को पूरा कर लिया। इसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि यह वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा, लेकिन यह स्पेस स्टेशन नियंत्रण से बाहर है और इसलिए कहां और ठीक ठीक किस समय गिरेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अधिकतर स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मलबे अपनी स्थिति में बने रहते हैं जिनके पृथ्वी पर गिरने का डर होता है। जानकारों के मुताबिक किसी आबादी वाले इलाके में इसके गिरने की संभावना कम है और संभव है कि यह समुद्र में गिरेगा। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने जनता से अपील की है कि अगर देश खुद को एक जिम्मेदार देश के रूप में स्वीकार करवाना चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज़ सुननी पड़ेगी। अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर वो राष्ट्र के नाम संदेश दे रही थीं। यूं तो उन्होंने रखाइन प्रांत का नाम भी लिया, लेकिन 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ने पर मजबूर करने को लेकर कुछ नहीं कहा। ना सिर्फ रखाइन जिस पर फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र है, बल्कि पूरे देश को ही विकास की ज़रूरत है। हम सभी को एकजुटता से इसके लिए कोशिश करनी होगी। अगर हमें विश्व समुदाय में जिम्मेदारी से खड़ा होना है तो हमें विश्व समुदाय की सोच और मंशा की भी इज्जत करनी होगी। आंग सान सूची के शब्द। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बिना दस्तावेजों के अमेरिका में आए अप्रवासी बच्चों को कानूनी मान्यता देने को लेकर विपक्ष के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी डाका का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसकी वजह है मेक्सिको का सीमा सुरक्षा को लेकर ढीला रवैया होना। ट्रंप ने अपनी पार्टी के सांसदों से अपील की है कि वो एक नया सख्त इमिग्रेशन कानून लाएं। वहीं मेक्सिको को चेताया कि अगर मेक्सिको ड्रग्स और प्रवासियों को अमेरिका में आने से नहीं रोकता है तो अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी बीच में ही छोड़ देगा। मेक्सिको को सीमा पर हमारी मदद करनी ही होगी। अगर वो मदद नहीं करता है तो दोनों देशों के लिए बुरी बात होगी। बहुत से लोग डाका पॉलिसी का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमें अब ठीक से देखना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर शुल्क लगाने के बाद अब चीन ने भी जवाब देने की ठानी है। चीन ने भी 120 से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब इन उत्पादों पर 15-25% टैक्स देना होगा। चीन ने पिछले महीने ही ऐलान किया था कि $3 करोड़ के अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की वह सोच रहा है। अमेरिका की बौद्धिक संपदा चोरी करने के आरोपों के बाद ट्रंप ने चीन के उत्पादों के आयात पर और ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही थी। आशंका है कि चीन भी सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकेगा। भारत प्रशासित कश्मीर में पुलिस और चरमपंथियों की मुठभेड़ में 20 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 3 भारतीय सैनिक हैं। 70 से भी ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि पिछले कुछ सालों में पहली बार एक ही दिन में इतनी जाने गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक SP वैद्य ने बताया कि सेना को शनिवार की रात जानकारी मिली थी कि श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर शोपियां जिले में कुछ चरमपंथी छुपे हुए हैं। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। जैसा कि अभी आपने समाचारों में सर्वप्रिया से सुना, दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। बंद की अपील एससी एसटी प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बीते दिनों आए एक आदेश के विरोध में की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते महीने एक आदेश दिया था जिसमें कोर्ट ने इस एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। वहीं केंद्र सरकार ने अब कहा है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कथित उत्पीड़न की स्थिति में स्वतः गिरफ्तारी और केस दर्ज करने पर रोक के आदेश को वो चुनौती देगी। आज एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। दलित संगठनों के बंद की अगर बात करें तो इसे कई राजनीतिक दलों ने समर्थन देने की घोषणा की है। पूरी रिपोर्ट नवीन नेगी से।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति समूह की नाराजगी लगातार जारी है। दरअसल कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के दुरुपयोग पर चिंता जताई थी और इसके तहत मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून के तहत 7 दिनों के भीतर शुरुआती जांच जरूर पूरी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में आज कई दलित संगठनों ने भारत बंद की अपील की है। भारत बंद की अपील करने वाले दलित संगठनों में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ भी शामिल है। इस महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव केपी चौधरी कहते हैं,
अब ये जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे वो जो रुकावट थी एससी समाज के प्रति जो अत्याचार संभावित हो रहे थे या होते रहे हैं उन पर वो रुकावट एक पूरी तरीके से मतलब समाप्त हो गई है। उससे पूरा अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक एक व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा व्यथित है, बहुत ज्यादा आहत है।
दलित संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार की यह मंशा ही नहीं रही है कि वह समाज के पिछड़े दायरे में खड़े वर्ग को आगे बढ़ने दे। जिस तरह की घटना गुजरात के ऊना में हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अलावा देश के कई हिस्सों में दलितों पर अत्याचार हुए, उसके बाद सरकार पर सवालिया निशान उठने लगते हैं। आखिर सरकार दलितों पर हो रहे अत्याचारों को क्यों नहीं रोक पा रही है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उसका क्या रुख है? केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस सवाल के जवाब में कहा,
जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी स्टडी करने के बाद सरकार इस मत की है कि इसको जो है हम एक तो रिव्यू भी करेंगे उसको और जरूरत हुई तो हम पार्लियामेंट में भी इसको इश्यू को लेके आएंगे। तो सरकार की मंशा और मकसद बहुत साफ है कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी सुरक्षा भी और सम्मान भी पूरी तरह से होना चाहिए।
आज होने वाले इस भारत बंद के चलते पंजाब में यातायात पर असर पड़ने के आसार हैं। इसके साथ ही यहाँ शिक्षण संस्थान और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद रहेंगी। बंद को तमाम राजनीतिक दलों ने अपना अपना समर्थन दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर दलितों और पिछड़े वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद कहते हैं,
बहुत साफ स्टैंड है हमारी पार्टी का कि साहब को किसी तरह डाइल्यूट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भी ऐसे समय में जब देश भर में ऊना में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में और जगहों पे दलितों पे अत्याचार की घटनाएं बढ़ी है, दलितों के खिलाफ अत्याचार के मामले को जो कानून बना हुआ है उसको डाइल्यूट करेंगे तो इसका समाज पे बहुत गलत असर पड़ेगा और लोग इसका फायदा उठा के दलितों पे और अत्याचार करेंगे।
लगातार उठते इस तरह के सवालों पर जवाब खोजने के लिए दलित संगठनों ने भारत बंद की अपील की है। नवीन नेगी, बीबीसी, नई दिल्ली।
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 2 अप्रैल यानी आज के दिन रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी। केंद्र सरकार ने दलित संगठनों से विरोध वापस लेने की अपील भी की है। उधर भारत प्रशासित कश्मीर की बात करें तो वहां अलगाववादी संगठनों ने आज बंद बुलाया है। कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में सेना के 3 जवान और 4 आम लोग भी शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। बंद इसके विरोध में ही बुलाया गया है। ताजा अपडेट के लिए मैंने अब से कुछ वक्त पहले श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात की।
आज के लिए तो पहले ही जैसा कि आपको मालूम है अलगाववादियों ने बंद बुलाया हुआ है और कहा है कि ये मातम का दिन है और इसको मातम के तौर पर मनाया जाएगा। और अपडेट ये है कि कुल मिला के जो डेथ टोल है इन हैं जो कि शोपियान और अनंतनाग जिलों में दक्षिणी कश्मीर के हुए हैं वो 20 है, यानी जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी हैं, 4 सिविलियंस हैं और 13 मिलिटेंट्स हैं।
तो क्या ये एनकाउंटर जो चल रहा है शनिवार से ये पूरा हो गया है या अभी एनकाउंटर जारी है?
जैसा कि पुलिस महानिदेशक शेषपाल वैद ने कहा है कि ये एनकाउंटर्स हो चुके हैं। इसमें एक एनकाउंटर जो अनंतनाग में हुआ है उसमें डीजीपी के मुताबिक एक चरमपंथी को जिंदा गिरफ्तार किया गया है, और जैसा कि हमें विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल पीएस राजू ने बताया कि इस एनकाउंटर के लिए कई सप्ताह से तैयारियां जारी थी, और उन्होंने ये भी बताया कि जो सारे मिलिटेंट मारे गए, सारे चरमपंथी मारे गए, इनमें 2 ऐसे हैं जिन्होंने पिछले वर्ष एक कश्मीरी सैनिक लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या की थी, और इसमें काफी ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग हो रही थी कई महीनों से, और पीएस राजू का कहना है कि ऐसे ऑपरेशंस जारी रहेंगे।
कल जिस तरह से सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन हुआ, आज बंद बुलाया गया है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं?
जी देखें, ये इस वर्ष का सबसे बड़ा ऑपरेशन था, और पिछले कई महीनों में इस तरह से बड़े पैमाने पे सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, और जैसा कि शोपियान, अनंतनाग और श्रीनगर के हॉस्पिटल में डॉक्टरों का कहना है या वहां के सुपरवाइजर्स का कहना है कि कोई 200 के करीब जो है आम नागरिक घायल हुए हैं और जिनकी आंखों में पैलेट्स लगे हैं या बुलेट इंजरीज हुई हैं। तो इस तरह से गवर्नमेंट की तैयारियां ये हैं कि किसी भी तरह से जो प्रदर्शन है उसका दायरा फैले नहीं। इसलिए क्या किया गया है कि जो भीतरी रेल सर्विस है उसको बंद किया गया है, शिक्षा संस्थानों के लिए छुट्टी का ऐलान किया गया है, और इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई। और ये इंटरनेट सुविधा बंद करने के अलावा क्या किया गया है कि अभी 3 दिन पहले ही राज्य सरकार ने कहा था कि अलगाववादियों पर जो प्रतिबंध है वो हटाए गए हैं, और उन्होंने जुमे की नमाज भी पढ़ी और भाषण भी कई जगहों पर दिया, लेकिन अब फिर से उन्हें बंद करना पड़ा है क्योंकि स्थिति इस प्रकार से बहुत वोलेटाइल हो गई है, और सरकार को ये डर है कि अगर शिक्षा संस्थान खोल दिए गए या अलगाववादियों पर से जो प्रतिबंध हटाने की घोषणा की गई थी उसको कंटिन्यू किया गया तो स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। तो इसलिए स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए हर प्रकार का जो प्रबंध है वो किया जा रहा है।
जानकारी दे रहे थे रियाज मसरूर। और अब एक ऐसी खबर जो पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। चीन की एक बेकार हो चुकी अंतरिक्ष लैब किसी भी वक्त धरती पर गिर सकती है। इसका नाम है तियांगोंग और इसका वजन है करीब 8 टन। विशेषज्ञ इस पर नजर रखे हुए हैं और उनका कहना है कि धरती पर लौटते वक्त इसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इस पर नियंत्रण खो चुकी चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि ये प्रशांत महासागर में गिरेगा। हालांकि दूसरे विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सटीक दावा नहीं किया जा सकता। इस मामले में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरप्रिया सांगवान। जी सरप्रिया,
वात्सल्य, ये एक चीनी स्पेस स्टेशन है जिसका मकसद अब पूरा हो गया है तो उसे वापस तो आना ही होगा, लेकिन ये लाया नहीं जा रहा है, ये अपने आप आ रहा है क्योंकि इस पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही किसी को ठीक ठीक पता है कि ये कहाँ गिरेगा और किस वक्त गिरेगा। इस स्पेस स्टेशन का नाम, जैसा आपने बताया, द तियांगोंग 1 है और ये लगभग 8.5 टन का है। इसे आप चीन की महत्वाकांक्षी स्पेस परियोजना का हिस्सा भी कह सकते हैं। चीन 2022 तक अंतरिक्ष में मानव स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य बनाए हुए है और ये उसी का पहला चरण माना जाता है। इसे साल 2011 में अंतरिक्ष में भेजा गया था और 5 साल बाद इसने अपने मिशन को पूरा कर लिया। इसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वापस पृथ्वी पर गिर जाएगा, लेकिन चीन ने साल 2016 में इस बात की पुष्टि की थी कि तियांगोंग 1 से उनका संपर्क टूट गया है और वो इसे नियंत्रित कर पाने में सक्षम नहीं है। जैसे जैसे पृथ्वी की ओर नजदीक पहुंचेगा तो वायुमंडल में प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और वो और तेजी से नीचे गिरेगा। पृथ्वी के 100 किलोमीटर के नजदीक आने पर ये और ज्यादा गर्म होने लगेगा। और अधिकतर स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ मलबे अपनी स्थिति में बने रहते हैं जिनके पृथ्वी पर गिरने का डर होता है। लेकिन इसमें चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि काफी हद तक संभव है कि ये समुद्र में गिरेगा, मतलब जैसे बिजली गिरती है उसी तरह ये गिरेगा।
तो जी, बहुत शुक्रिया सरप्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात पश्चिम बंगाल के आसनसोल की, जहां कुछ दिन पहले हुई हिंसा के बाद अब जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटने लगी है। कल भारतीय जनता पार्टी के 4 सांसदों ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा भी आसनसोल में है। वो पहुंचे शहर की श्रीनगर कॉलोनी में, जहां हिंसा के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए थे। अब कुछ लोग वापस लौटे हैं। दिलनवाज ने उनसे बात की।
मैं इस समय पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 220 किलोमीटर दूर आसनसोल के श्रीनगर इलाके में हूं, जहां मैं खड़ा हूं। यहां से मेरी बाईं तरफ जो सरकारी क्वार्टर है इसमें अधिकतर मुस्लिम रहते हैं, और जो दाईं तरफ बिल्कुल यहां से 10 कदम दूर है वहां हिंदू आबादी रहती है। 4-5 पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए, यहां पे आबादी है, आसपास के लोग हैं मेरे साथ यहां, इनसे पूछेंगे क्या हुआ था उस दिन।
ये जो वो इन लोग पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद पुलिस पर पथराव किया तो यहां हम लोग के साथ जमा हो गया, तो उन लोग फिर हम लोग पर ईटा चलाने के बाद फायरिंग करने लगा।
हम लोग अपने बचाव में क्या करेंगे, ईटा पत्थर चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। इन लोग फायरिंग करने लगा, हम लोग देखिए सब घर में फायरिंग के निशान भी है।
दिलनवाज पाशा की इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। इस बीच सर्वप्रिय अखबारों के पन्ने पलट चुकी हैं, क्या सुर्खियां हैं सर्वप्रिया आज?
वात्सल्य, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम सांप्रदायिक हिंसा की खबरें अपने श्रोताओं को देते आ रहे हैं, आप चाहे राजस्थान की बात करें, बंगाल की बात करें या बिहार। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक आधिकारिक रिकॉर्ड छाने हैं और बताया है कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन तोड़कर NDA में शामिल हुए हैं, तब से 200 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं और 64 घटनाएं तो इसी साल हुई हैं अब तक। तो पिछले
2018 के 3 महीनों में
बिल्कुल पिछले महीने ही मार्च में 30 ऐसी घटनाएं हुई, जिनमें ज्यादातर तब हुई जब कोई धार्मिक जुलूस मुस्लिम इलाकों से गुजर रहा था। तो आप इन सभी घटनाओं में एक पैटर्न भी नोट कर सकते हैं। और दूसरी खबर है कि आपने एक फिल्म देखी होगी अब तक 56, उसी तर्ज पर यूपी में अब तक 1000 हुए हैं। मैं बात कर रही हूँ द हिंदू की रिपोर्ट की, जो बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक साल में 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं। विपक्ष सवाल भी उठा रहा है इस पर कि ये सब फेक एनकाउंटर है और मरने वाले दलित मुस्लिम या पिछड़ी जातियों के ही कैसे हैं। और कुछ दिन पहले खबर आई थी कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऐसे 4 एनकाउंटर्स की जाँच भी कर रहा है
जी।
हाँ, और जो CBSE लीक पेपर का बात है, आज सोमवार है, आज भी एक परीक्षा है और आज नया तरीका अपनाएगा CBSE पेपर लेने का। परीक्षा केंद्र में ही प्रिंट होकर क्वेश्चन पेपर बटेगा, तो ये देखना होगा कि कितनी सहजता से
कितना लीक प्रूफ होता है,
सहजता से हो पाएगा
जी।
और आज आप जैसे आपने बताया कि एस सी एस टी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध हो रहा है, हमने श्रोताओं को बताया था कि भारत बंद की अपील की है संगठनों ने, इसी फैसले पर केंद्र आज रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगा क्योंकि इतना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इस पर हंगामा हो चुका है
और ये खबर भी सारे अखबारों में
बिल्कुल। और आरएसएस के मनमोहन वैद्य ने कहा है कि जो कांग्रेस मुक्त भारत जो एक जुमला या एक राजनीतिक बात कही जाती थी कि वो एक राजनीतिक जुमला है, वो खुद ही कह रहे हैं ये राजनीतिक भाषा है और ये आरएसएस की भाषा नहीं है।
आरएसएस की ऐसी भाषा नहीं है ऐसा कहना है आरएसएस का। बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया।
ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, भाग लेंगे 71 देशों के 6000 से ज्यादा एथलीट।
Here he goes. Bolt's got it in his hand. He's put it in another hand. And the Usain Bolt show starts. The crowd is...
कैसा रहेगा भारत का प्रदर्शन? क्या ग्लासगो खेलों से ज्यादा पदक आएंगे भारत के हिस्से में? मैं रेहान फदल लाऊंगा गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा खबरें दिन भर और नमस्कार भारत में 4 अप्रैल से।
उधर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी खबरों में है। सचिन राज्यसभा के सांसद चुने गए तो अरसे तक सदन में उनकी गैर हाजिरी खबर बनती रही, लेकिन अब वो खबर में है तो इसकी वजह है कि बतौर राज्यसभा सांसद उन्हें जो वेतन मिला है सचिन ने उसे प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया है। वस्तुल्ला खान साहब पाकिस्तान डायरी में इसी खबर की चर्चा कर रहे हैं लेकिन उनका अंदाज थोड़ा अलग है।
राज्यसभा की विकेट पे 6 वर्ष बल्ला घुमाने के बाद सचिन तेंदुलकर ने पैड खोल दिए और पूरी मैच फीस यानी 90 लाख रुपए भी पाई पाई समेत वापस करके बल्ला घुमाते निकल लिए। कोई पूछे कि जब राज्यसभा में इतने लंबे समय सिर्फ विकेट पे खड़े रह के रन ही रोकने थे तो फिर आप गए क्यों थे, और जब चले ही गए थे तो मैच की फीस क्यों वापस कर दी? 90 लाख कम तो नहीं होते, पाकिस्तान के 1,60,00,000 रुपयों के बराबर हैं। राज्यसभा या पाकिस्तान की सेनेट में तो बहुत से लोग वास्ते डाल के जाते हैं, आप तो इतने सीधे निकले कि जो तनख्वाह मिली वो भी प्रधान पत्नी के हाथ में धरने की बजाय प्रधानमंत्री के वेलफेयर फंड में जमा करवा के घर लौट आए। इससे तो अच्छा था राज्यसभा की सीट शुरू में ही त्याग के किसी ऐसे जरूरतमंद के लिए छोड़ देते जो 4 पैसे कमाना चाहता हो। सचिन जी, दुनिया भर में हम जैसे फैन तो आपको वैसे ही महान मानते हैं, 90 लाख रुपए वापस करके और कितनी महानता मिल गई? चैनलों और पत्रिकाओं में एक दिन की TRP? बस अगर आपका मकसद ये है कि दूसरे सदस्य भी आपकी तरह बड़ेपन का मुजाहरा करें तो ऐसा तो कभी नहीं होने का। वो भी इस रास्ते पे चल पड़े, फिर तो चल गया राजनीति का उद्योग, फिर तो कट गई फसल और चुग लिया चिड़ियों ने खेत। काश ये 90 लाख वापस करने से पहले मेरी आपसे बात हो जाती तो मैं आपको समझाता कि भैया हर गेम जेंटलमैन्स गेम नहीं हुआ करती, आउट सिर्फ क्रिकेट के मैदान में हुआ जाता है, राजनीति की विकेट पे बहुत ही दबाव डाला जाए तो खिलाड़ी विकेट बगल में दाब के भाग निकलता है। आपको तो सिंगल्स लेने की भी आदत पड़ी हुई है, पार्लियामेंट की क्रीज पे सिंगल लेने की कोई रीति नहीं, यहाँ सिर्फ चौका या छक्का लगता है या फिर मुंह तोड़ बाउंसर चलता है। बॉल टेम्परिंग क्रिकेट में कोई अपराध हो तो हो, राजनीति में तो ये आर्ट है, जो जितनी बॉल टेम्परिंग कर सके उसकी उतनी ही वाह वाह। पर सचिन जी, आप जैसों को समझाने सिखाने का कोई फायदा नहीं, जिन्हें पूरा संसार ही वेंकटेश्वर स्टेडियम नजर आता है। आप इस पे यकीन रखते हैं तो भले रखें कि खेल में हार जीत नहीं होती बल्कि जीत सिर्फ खेल की होती है, मगर इस तरह की सोच के साथ अगर आप सांसद के कॉरिडोर में नजर आएंगे फिर तो 90 लाख रुपए वापस करके ही जाएंगे ना। आप जैसे लोग ही तो हैं जो आदर्शवादी होने के चक्कर में सियासत के व्यापार को बट्टा लगा के चले जाते हैं, फिर कई दिनों तक आपके सांसदीय सहयोगियों को जनता के ताने सहने पड़ते हैं। एक तेंदुलकर था और एक तुम हो, भाई वाह। मैं तो इस घटना के बाद हर राजनीतिक गुट से विनती करूंगा कि ताऊ आइंदा सोच समझ के टिकट बांटना, सचिन जैसों को आदर जरूर देना पर टिकट बिल्कुल नहीं। अपने चक्कर में हमारा धंधा भी खराब कर दिया, पूरे 90 लाख मिट्टी में मिलाई दिए।
गब्बर सिंह की याद दिला दी। वसत साहब की डायरी पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। और अब साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इसी सप्ताह 4 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड शहर में 21वें राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने जा रहे हैं। इससे पहले साल 2014 में ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक सहित 64 पदक जीते थे। इन खेलों में भारत ने सबसे अधिक 101 पदक साल 2010 में अपनी ही मेजबानी में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में हासिल किए। तब भारत ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते। वैसे भारत अभी तक 155 स्वर्ण, 155 रजत और 128 कांस्य पदक सहित 438 पदक जीत चुका है। इस बार भारत को सबसे अधिक आस निशानेबाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और बैडमिंटन में होगी। और अब समीक्षा, गेंद से छेड़छाड़ के दोषी खिलाड़ियों को सजा कितनी सही?
And we have breaking news coming in on the big cricket controversy.
ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और उपकप्तान डेविड वार्नर पर एक साल का प्रतिबंध लगा। इस दौरान वो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। इनके अलावा कैमरून बैनक्राफ्ट भी 9 महीने तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। लेकिन ये सजा आईसीसी ने नहीं, खुद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने दी है। यानी आईसीसी और क्रिकेट बोर्ड के पैमाने अलग अलग हैं। जो भी हो, इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
जो आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट से इनको सजा मिली थी, स्टीव स्मिथ को एक मैच का बैन और एक फाइन था, कैमरन बैनक्राफ्ट को 75% मैच फी का फाइन था और डेविड वार्नर पे तो कोई एक्शन लिया ही नहीं गया था। ये जो एक्शन लिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, अपने इंटेग्रिटी ऑफिसर्स जो है उन्होंने तहकीकात जो की है और वो आईसीसी के जो रूलिंग है उससे आगे बढ़कर ये जो है सजा दी है इनको।
और इसी मुद्दे को लेकर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर एस के बंसल कहते हैं,
ऑस्ट्रेलिया को मालूम है कि सबसे बड़ी बेइज्जती किसकी हुई है, ये मुल्क की बेइज्जती हुई है। उनके प्राइम मिनिस्टर इसके अंदर कूद गए हैं, उनको मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया की दुनिया के अंदर जीरो हो गई है इज्जत। तो क्या उस चीज को देखते हुए मैं तो कहता हूँ ये जो एक साल की सजा हुई है बिल्कुल ठीक सजा हुई है।
स्टीव स्मिथ और वार्नर अब आईपीएल में भी खेलते नजर नहीं आएंगे। स्टीव स्मिथ की जगह अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी अजिंक्य रहाणे और डेविड वार्नर की जगह सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन करेंगे। तो क्या सब कुछ मीडिया में आने के बाद रो धोकर बची खुची खेल भावना दिखाने से स्मिथ और वार्नर कुछ सहानुभूति के हकदार हो गए हैं? अयाज भी मानते हैं कि आईपीएल से उन्हें हटाकर अब बोर्ड ने भी अपनी ताकत का एहसास खिलाड़ियों को कराया है।
बड़े बोर्ड जो है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, लेकिन ऐसे मामले में अब मुझे लग रहा है कि सब बोर्ड एकजुट हो रहे हैं क्योंकि प्लेयर पावर को किस तरह से कंट्रोल करना उनके हाथों से निकल रहा था और ये एक मौका मिला है उन्हें ये बताने के लिए कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हम जो है वो कुछ कर सकते हैं।
कुछ भी हो, नुकसान तो क्रिकेट और खिलाड़ियों का ही हुआ है। आईपीएल का नया सीजन इसी शनिवार से शुरू होगा। उद्घाटक मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी के बीच आईपीएल के जलवे को लेकर अयाज मेमन कहते हैं,
एटलीस्ट चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी और जो मैंने आज सोशल मीडिया पे देखा है या जो पढ़ा भी है कि प्रैक्टिस मैचेस में भी बहुत दर्शक दिखने गए चेन्नई सुपर किंग्स को चेन्नई में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर सर्वप्रिया सांगवान से।
दलित संगठनों ने आज किया है भारत बंद का आह्वान। सुप्रीम के एससी एसटी एक्ट पर आए फैसले के विरोध में है दलित संगठन। कुछ ही देर बाद चीन का बंद पड़ा स्पेस स्टेशन धरती पर गिरते हुए देखा जा सकता है। तियांगोंग एक नाम का स्पेस स्टेशन 2011 में अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन यह स्पेस स्टेशन नियंत्रण से बाहर है और इसलिए यह कहां और ठीक ठीक किस समय गिरेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन किसी आबादी वाले इलाके में इसके गिरने की संभावना कम है। म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने जनता से अपील की है कि अगर देश खुद को एक जिम्मेदार देश के रूप में स्वीकार करवाना चाहता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आवाज़ सुननी पड़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि बिना दस्तावेजों के अमेरिका में आए अप्रवासी बच्चों को कानूनी मान्यता देने को लेकर विपक्ष के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका के स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर शुल्क लगाने के बाद अब चीन ने भी जवाब दिया है। चीन ने 120 से ज्यादा अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे शाकिर आलम, फेसबुक प्रसारण में मदद की भूमिका राय ने। आपसे अगली मुलाकात दिन भर में शाम के वक्त 7:30 बजे होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है बीबीसी हिंदी.com का पन्ना। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।